नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने 21 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। भारत ने सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर अपने नागरिकों को ईरान की अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी। वित्त कार्रवाई कार्यबल ने डिजिटल युग में आतंकी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने संबंधी जोखिमों की चेतावनी दी। इसमें पाकिस्तान की भूमिका को उजागर भी किया। CBSE ने विद्यार्थियों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों से तेल बोर्ड की स्थापना करने को कहा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में देश के पूर्व हिस्सों में मध्य भारत में आसपास बहुत तेज बारिश रहने की संभावना व्यक्त की है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन सिंगल्स में तथा सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी डबल्स में जापान ओपन के दूसरे दौर में पहुंचे। और महिला क्रिकेट में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आह्वान करेगी। मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित किए जाने की संभावना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष यात्री सुभाषु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा की सराहना का प्रस्ताव पारित किया है। ग्रुप कैप्टन सुभाषु शुक्ला कल अपनी अंतरिक्ष यात्रा से सुरक्षित पृथ्वी पर वापस आ गए, जो भारत की अनंत आकांक्षाओं का प्रतीक है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सुभाषु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन ने भारत को अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों की सराहना करता है, जिनके अथक प्रयासों से ये उपलब्धि संभव हुई है। श्री वैष्णव ने कहा है कि सुभाषु शुक्ला ने सुरक्षा गुरुत्व में मांसपेशी पुनर्जनन शैवाल और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि फसल व्यवहारिकता माइक्रोब्स के जीवन की संभावनाएं और मानव की सोचने समझने की क्षमता पर अंतरिक्ष के असर का अध्ययन और साइनोबैक्टीरिया जैसे जीवों के व्यवहार जैसे विषयों पर अग्रणी प्रयोग किए हैं।
आज मंत्रिमंडल कई महत्वपूर्ण विषयों के साथ देश की एक महान उपलब्धि से जुड़ी देश की भावना को अभिव्यक्त कर रही है। 15 जुलाई को भारत की अनंत आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा से सकुशल धरती पर लौटे हैं। ये समूचे देश के लिए गर्व गौरव और उल्लास का अवसर है। आज मंत्रिमंडल देश के साथ मिलकर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटने का अभिनंदन करता है।
भारत ने अपने नागरिकों से ईरान की अनावश्यक यात्रा से बचने को कहा है। ईरान में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच यह परामर्श जारी किया गया। ईरान ने भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय नागरिकों को ईरान यात्रा से पहले स्थिति पर सतर्कता से नजर रखने और भारतीय प्रौद्योगिकरण से जारी परामर्शों की भी ध्यान देने को कहा है। वर्तमान में ईरान में रह रहे और स्वदेश लौटने के इच्छुक भारतीय नागरिकों को वाणिज्यिक उड़ान और अन्य विकल्पों की मदद लेने का परामर्श दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF को जम्मू कश्मीर में तैनात के लिए 20,000 से ज्यादा जवानों को शामिल करने हुए 20 नई बटालियन बनाने की संवैधानिक मंजूरी दे दी है। आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता ने बताया है कि शुरुआत में CRPF ने 35 बटालियन के लिए मंजूरी मांगी थी, लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद मंत्रालय ने तत्काल उपाय के तौर पर 20 बटालियंस को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे चुकी है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी स्वीकृति मिल सकती है। नई बटालियन जम्मू कश्मीर के भूभाग और सुरक्षा जरूरतों के अनुरूप उन्नत परिचालन क्षमताओं से लैस होगी और इस कदमों को एक व्यापक रणनीतिक पुनर्संयोजन के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ड्रोन्स और अन्य मानव रहित हथियार प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया था जिसमें भारतीय सेना ने निष्क्रिय कर दिया। नई दिल्ली में एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए जनरल चौहान ने कहा है कि पाकिस्तान के किसी भी ड्रोन से भारत के सैन्य या नागरिक बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जनरल चौहान ने कहा है कि देश को अपनी सुरक्षा के लिए रक्षा क्षेत्र में निवेश और विनिर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा क्योंकि विदेशी तकनीक पर निर्भरता हमारी तैयारियों को कमजोर कर सकती है। वैश्विक आतंकवाद वित्त पोषण निगरानी संस्थान वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF ने तेजी से डिजिटल हो रही दुनिया में धन के दुरुपयोग से जुड़े संभावित खतरों को उजागर किया है। FATF ने कहा है कि धन का दुरुपयोग आतंकवाद को समर्थन देने, अवैध कमाई छिपाने या वैश्विक शांति को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। श्रीलंका के 14 राजनीतिक दलों को 24 सदस्यीय शिष्टमंडल ने आज नई दिल्ली में विशेष सचिव विक्रम मिश्री से भेंट की। बैठक के दौरान विदेश सचिव ने भारत श्रीलंका भागीदारी को बढ़ाने के लिए भावी रूपरेखा तैयार करने में संबंध पक्षों के रूप में शिष्टमंडल के योगदान की सराहना की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि युवा राजनीतिक नेताओं का शिष्टमंडल 2 सप्ताह के कार्यक्रम के लिए भारत में है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने विद्यार्थियों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में टेल बोर्ड स्थापित करने को कहा है। CBSE ने इस संबंध में सभी स्कूल प्रमुखों को पत्र लिखा है। एक रिपोर्ट।
CBSE ने स्कूलों में स्वस्थ भोजन और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने को कहा है। बोर्ड ने विद्यार्थियों को सीढ़ियों का उपयोग करने, छोटे व्यायाम अवकाश आयोजित करने और पैदल चलने के मार्गों को सुगम बनाने के लिए भी कहा है। वैश्विक रोग भार 2021 मोटापा पूर्वानुमान अध्ययन के अनुसार भारत में मोटापे से पीड़ित वयस्कों की संख्या 2050 तक लगभग 45 करोड़ होने का अनुमान है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
सरकार ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेशन संपत्ति अभियान के पहले 2 सप्ताह में 1,40,000 धनशोधन खाते खोले गए हैं। वित्त मंत्रालय ने कई प्रमुख योजनाओं की पहुंच को मजबूत करने के लिए इस महीने की पहली तारीख से 3 महीने का ये अभियान शुरू किया था। इसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना शामिल है। ये अभियान सभी ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में चलाया जा रहा है जिससे प्रत्येक पात्र नागरिक इन परिवर्तनकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। झारखंड में बोकारो जिले में जागेश्वर विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत काशी लघु पर्वतमाला में काश्ती तांग जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मुठभेड़ में कोबरा बटालियन का एक जवान उस समय शहीद हो गया जब उसे गंभीर रूप से घायल होने के बाद बोकारो जिले के जंगल से रांची ले जाया जा रहा था। देश में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सराहना दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य विश्व में AI क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को उजागर करना है। एक रिपोर्ट।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आज स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, शासन और उद्योग जगत में बड़े बदलाव हो रहे हैं। सरकार का सभी के लिए AI और AI के लिए राष्ट्रीय रणनीति का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से न केवल आर्थिक विकास बल्कि जीवन को बेहतर बनाने, समावेशिता सुनिश्चित करने और समानता को बढ़ावा देना भी है। AI क्षेत्र को और विकसित करने के लिए सरकार ने स्किल इंडिया AI पोर्टल, राष्ट्रीय AI कार्यक्रम और AI युवा बूट कैंप जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनके माध्यम से छात्रों और श्रमिकों को व्यावहारिक प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान किया जाता है। व्यवसायिक केंद्र भी पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए AI उपकरण अपना रहे हैं। समाचार कक्ष से मनोज।
मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में देश के पूर्वी हिस्से में और मध्य भारत के आसपास बहुत तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अगले 6 से 7 दिन के दौरान केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में बहुत तेज वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। उधर उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिनों में बारिश का अनुमान है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 14 जिलों तवांग, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, कामले, सियांग और अपर सियांग, वेस्ट सियांग, दिवांग वैली, लोअर दिवांग वैली, अंजाव, तिराप और चांगलांग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। जापान ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग ने पहले दौर में दक्षिण कोरिया के कांग मिन ह्यू और किम डोंग जू को हराया। और भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच तीन मैचों का एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज इंग्लैंड के साउथैम्पटन में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे शुरू होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।